तो ये शिकस्ता दिल, टूटा हुआ दिल अल्लाह की बारगाह में क्यों इतना मंजूर नजर कबूल होता?
शिकस्ता दिल, चोट खाया हुआ इंसान अल्लाह को पुकारता है तो उस पुकार के अंदर अखलास बेपना होता है।
सर, ये जो गैब का इल्म है सर, मना होने की हिकमत क्या है सर इसके पीछे?
इसको मैं इल्म गैब नहीं मानता। कई सौ सदियों पर मुहित तजर्बे की बुनियाद पर वर्कआउट की, जितने इंसान मिले उनके अंदर जो चीजें कॉमन थी, उनके जो हालात थे, उसको उन्होंने प्रिंसिपल बना लिया।
बड़े लोग इंतहाई पारसा होते हैं, 5 फर्ज नमाजें, उसके बाद चाश्त की, इशराक की और तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, इंतहा की तस्बीह करते हैं, अल्लाह मौका देता है हज उमरा भी करते हैं, हर तरह की इबादत करते हैं, लेकिन उनका रवैया, उनका इखलाक, उसमें किसी किस्म की शाइस्तगी नज़र नहीं आती। बाज़ औक़ात उनकी ज़ुबान इतनी तुर्श होती है, किसी का दिल दुख जाता है। ऐसा क्यों होता है कि बड़ी इबादतों के बाद भी बाज़ लोगों के रवैयों में बिल्कुल तब्दीली नहीं आती?
ये आमतौर पर उस सूरत में होता है जब हम दीन को मज़हब समझ लेते हैं, जब हम ये समझ लेते हैं कि दीन हमारा असल में मज़हब है और ये इबादात का मजमूआ है। तो रब ताला ने हमें, हमसे सिर्फ हमारी इबादात का ही पूछना है। नेकी के बारे में कॉन्सेप्ट हमारा महदूद होता है कि हम इबादात को और नेकी को, दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर जाते हैं, जबकि इबादात इंसान को ट्रेन करती हैं नेकी के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है, हकुकुल्ला हैं वो, और उसकी अदायगी अल्लाह का हक है, हम पर फ़र्ज़ है, उसकी अदायगी होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह का हक अदा करने के साथ साथ जो एडिशनल एक फ़ायदा हमें मिल रहा है वो है कि हमें ट्रेनिंग हमारी हो रही है नेकी के कामों के लिए, क्योंकि नेकी जब हम करते हैं तो उसमें कुर्बानी आ जाती है कि हमें बाज़ का अपने हार्ड अर्न्ड मनी की कुर्बानी करनी पड़ जाती है, कहीं हमें अपने आराम की कमी करना की कुर्बानी करनी पड़ती है, कहीं हमारे मफाद वो कुर्बान हो रहे होते हैं दूसरों के लिए। इसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए और रब के साथ इश्क चाहिए। सिर्फ ये दो ही ज़रिए हैं जिनके ज़रिए इंसान कुर्बानी करने पर तैयार हो जाता है। वो ट्रेनिंग हमें इबादात से एक एडिशनल एडवांटेज के तौर पर मिल जाती है। बुनियादी चीज़ तो ये है कि वो अल्लाह का हक है, उसकी इबादत करना, कि हम उसकी इबादत करें, ये हमारे रब का हक है कि वो लायक इबादत है। बहसियत बंदे के हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने रब की इबादत करें। तो ये हकुकुल्लाह अदा करते हैं, वो तो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, बुनियादी चीज़ है, वो प्राइमरी मकसद है। एक सेकेंडरी गेन आता है उससे, अब वो ये है कि हम नेकी के लिए ट्रेन हो जाते हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट हमारे तब्दील हो जाए तो फिर हमारे रवैयों में ये सख्ती आती है, या बाज़ औक़ात शैतान बड़ी खूबसूरती के साथ रोल प्ले करता है और वो हमें, हमारे दिल में, हमारी इबादात के बारे में कई तरह का तफाखर पैदा कर देता है, तो उसके नतीजे में हमारे अंदर सख्ती आने लगती है। तो वो शैतान गेम खेल रहा होता है, उस शैतान को चेक किया जाना चाहिए साथ ही साथ।
ठीक सर। सर, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट और आइडिया डिस्कस होता है, कॉमन सर ये होता है कि जो कुछ मिलना है वो मिल ही जाना है, किसी न किसी बहाने से मिल जाना है, और सब कुछ तो लिखा हुआ है, सब कुछ तो पहले से मुतय्यन कर दिया गया है, इसलिए फ़िक्रमंद होना, एफर्ट करना, कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सर, हम एक एफर्ट के फ़लसफे से भी वाकिफ़ होते हैं सर, जिसमें टर्म्स इस्तेमाल होती हैं गोल सेटिंग की, स्ट्रेटजी की, प्लानिंग की, उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स को मीडियम टर्म, स्मॉल टर्म गोल्स में कन्वर्ट करने की, उसके बाद एक पूरी एक हायरार्की बना के टारगेट को अचीव करने की। सर, ये दोनों जो अप्रोच हैं, ये इनमें से बेहतर अप्रोच क्या, किसको अपनाना चाहिए?
कुरान में दो तरह की सूरतें आई हैं, एक बयानात हैं, बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स खुलकर बयान किए गए हैं, और कुछ मुशाबहात हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको डिटेल में डिस्कस किया ही नहीं गया बिल्कुल, जैसे रूह क्या है और तकदीर क्या है। जहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि सूरतें मुशाबहात में से हैं या अहकामात ऐसे हैं जिनकी हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसका बेहतरीन सोर्स हदीस और सुन्नत है कि हम हदीस और सुन्नत से गाइडेंस लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, पहली बात तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर फाइज हैं, उसको एक सेंटेंस में तो सिर्फ यूं ही बयान किया जा सकता है कि अल्लाह के बाद सबसे अजीम हस्ती हैं, तो और अल्लाह के महबूब भी हैं। इतना बड़ा मकाम जिस हस्ती के पास है, उनको तो काम करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। चलिए, मक्का मकरमा की ज़िंदगी तो जद्दोजहद का पीरियड था, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ तो हुकूमत कायम हो गई मुसलमानों की, लेकिन वहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का रवैया वही रहा जो पहले था। तो वहाँ से जब हम लाइट लेते हैं, रोशनी वहाँ से हासिल करते हैं, तो चीज़ें खुल जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी हस्ती और अल्लाह के महबूब होने के बावजूद सारी उम्र उन्होंने अमलियत पर जोर दिया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दीनदार कौन हो सकता है दुनिया में। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया भी निभाई है, आपकी फैमिली लाइफ, आपके एज ए लीडर, एज ए जनरल, एज ए जज, पूरी ज़िंदगी हम देख लें। हम थोड़ा सा मुसलमान एक जगह कोताही करते हैं, हम अकीदत बहुत रखते हैं, इश्क बहुत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें, और जनरली है, दिखावा नहीं है वो। लेकिन इसका एक पहलू हम छोड़ देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तो हमारे लिए एक लाइट हाउस है जो हमें दुरुस्त समत में समुद्री तूफान से बचा के सेफ्टी की तरफ ले जाता। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की स्टडी एज ए रूलर नहीं करते हैं, एज ए जज बड़े बड़े खूबसूरत फैसले हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी स्टडी नहीं करते हैं। एज ए जनरल बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजिक मूव्स और टेक्टिकल मूव्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम इस तरह से स्टडी करें, हमारी अकीदत और एहतराम और अदब, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन हम अगर इस तरह स्टडी करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को, तो हम सीखेंगे बहुत कुछ। तो ये जो पहलू है कि मुसलमान हाथ पे हाथ रख के बैठे, मुसलमान इस इंतज़ार में बैठे कि गैब से नवाला आएगा, मेरे मुंह में उतर जाएगा, तो ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दौड़ना हमारा काम है। आप घोड़े पर बैठती हैं, घोड़ा दौड़ता है, लेकिन लगाम आपके हाथ में है। दौड़ वो रहा है, मेहनत वो कर रहा है, लगाम आपके हाथ में है। तो इंसान की लगाम रब के हाथ में है, निज़ाम की लगाम रब के हाथ में है। तो इंसान को घोड़े के मिसल दौड़ना है, कुवत सर्फ करनी है, काम करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में रहना है, लेकिन लगाम रब के हाथ में है, ये हमें जहन में रखना चाहिए। अब उसको हम तकदीर कह लें, उसको हम तकदीर का जबर कह लें, जो कुछ भी कहना चाहें, लेकिन फैक्ट रिमेंस कि लगाम हमारी रब के हाथ में ही रहती है, लेकिन दौड़ना हमारा काम है, वो हमें ज़रूर सर अंजाम देना है। तो ये आलमुल असबाब है जिसमें हम जिंदा हैं, कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है ये। तो कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया में अगर रह रहे हैं तो उन्हीं असूलों के तहत हमें ज़िंदा रहना है जो रब ने इस आलमुल असबाब के लिए बनाए हैं। और वो ये है कि हर काम का एक हीला बहाना है, हत्ता कि मौत का भी एक हीला है, एक बहाना है। तो रिस्क रोजी देना रब का काम है, इसमें शक नहीं है। लेकिन वो जो कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया में रहते हुए एक हीला करना है, वो हमारी ड्यूटी है, वो हमें करना होगा। देना रब का काम है, इसलिए आप इतना लोगों से मिलते हैं, बहुत वसी ताल्लुकात हैं आपके। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा मेहनत करते करते मर जाते हैं, किसी मकाम पर नहीं पहुंचते। कुछ लोग हैं कि अगर महाव्रतन बोला जाए तो मिट्टी को हाथ लगाते हैं सोना हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत के जवाब में बहुत कुछ मुआवजा मिल जाता है। तो लगाम रब के हाथ में है।
बिल्कुल ठीक सर। एक बड़ा ये कॉमन सा क्वेश्चन है सर, और समटाइम सोशल मीडिया पे भी ये सवाल की शक्ल में मुख्तलिफ जगह नज़र आता है। सर कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए, कहाँ जाके सर छोड़ देना चाहिए कि बस ये मेरी लिमिट है, इसके बाद ये डिटर्मिनेशन नहीं, ये एक ज़िद की शक्ल बन रही है। क्योंकि ये जो एक पॉजिटिव चीज़ है परस्यू करना, डिटर्मिनेशन, पैशन होना, इसी तरह इसकी शिद्दत की हालत एक ऑब्सेशन है, एक खब्त है। कहाँ जाके सर हमें लाइन लगा देनी चाहिए कि ये बस मेरी लिमिट है, इसके बाद मुझे बस अब नतीजे का इंतज़ार करना और अल्लाह पे छोड़ना।
जहाँ हम ये मुतमईन हो जाएं कि रब ताला ने जो हमें ज़हनी सलाहियतें दी हैं, जो जिस्मानी क़ुव्वत अता फरमाई है, जो अक्ल अता फरमाई है, जो इल्म अता फरमाया है, हमने उससे बेहतरीन काम लेते हुए अपनी भरपूर कोशिश कर ली। क्योंकि मैं अपने बारे में जो जानता हूँ दूसरा नहीं जान सकता। मैं जो मसरूफ़ नज़र आता हूँ, मैं सिर्फ नज़र आ रहा हूँ या वाकईतन मैं काम कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं जानूँगा। देखने वाला तो ये देखेगा कि सरफराज साहब सुबह 7 बजे ऑफिस जाते हैं, 11 बजे तक रात बैठे होते हैं, सारा दिन कलम घिस रहे होते हैं, देखने वाला तो ये देखेगा। लेकिन मैं अंदर से जानता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ या आई एम जस्ट वाइलिंग अवे द टाइम। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इंसान जब ख़ुद मुतमईन हो जाए कि जो कुछ सलाहियतें, अक्ल, इल्म, जिस्मानी क़ुव्वत, ज़हनी क़ुव्वत, जो कुछ रब ने मुझे अता फरमाया, मैंने उससे भरपूर काम लिया और अपनी किसी मेहनत कर ली, बस वो कट ऑफ लाइन है। वहाँ उसके बाद फिर रब से दुआ करता बंदा कि या बारी ताला, मैंने दयानदारी से अपनी सी कोशिश कर ली, अब मामला तेरे सुपुर्द है, तू बेहतर जानता कि इसका क्या अजर देना है, तो इसका मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा दे। ये ज़िंदगी गुजारने का मेरा ख्याल है बेहतरीन ढब है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हमें ज़रूर देखना चाहिए कि जब हम रब से ये अर्ज़ कर रहे हैं कि या बारी ताला, मैंने अपनी किसी पूरी कोशिश कर ली, अब मामला तेरे सुपुर्द है, तो इसका मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा दे, तो फिर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए कि जो कुछ भी इसके जवाब में मिला है वह हमारे हक़ में बेहतरीन है। मैं आपसे अक्सर बेशतर प्रोग्राम में कहता रहता हूँ कि हम एक जगह जाकर कुछ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होते, वो है कि हम अपना मामला रब के सुपुर्द तो कर देते हैं, ये कह के कि तू बेहतरीन अजर देने वाला है, तू मुझे इसका बेहतरीन अजर अता फरमा दे। ध्यानदारी का तकाजा ये है कि फिर जो कुछ वहाँ से आए वो उसको हम हंसी खुशी कबूल कर लें। लेकिन समा और दी अदर, शायद हमारे बचपन की ट्रेनिंग का असर है, ये क्या है कि हम नाकामियों से बड़े डरते हैं, बहुत शाई हैं हम नाकामी को तस्लीम करने में। हालांकि दर हकीकत नाकामी कामयाबी का जीना है, नाकामी کامیابی کی ضمانت ہے. تو اگر ہم رب کی طرف سے جو اجر آیا اس میں وہ نتیجہ نہیں ہے جو ہم توقع کر رہے تھے, تو اس کو ہم ہنسی خوشی قبول کر لیں کہ یقینی طور پہ اس میں کوئی مصلحت ہے, ہمارے کوئی بہتری چھپی ہے جو رب نے یہ عطا کیا, تو ہم اس کو قبول کریں جینونلی ود اے اسمائلنگ فیس. تو آپ دیکھیے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. یہ جو ہماری زندگی کے بارے میں گلے شکوے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. ہم بچوں کو ڈراتے رہتے ہیں کہ فیل ہو کے گھر نہیں آنا, اس کے دماغ میں خوف بیٹھ جاتا ہے کہ جو فیلئر ہے وہ معلوم نہیں کیا تباہ کن چیز ہے. دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کا مقابلہ دوسروں کے ساتھ کر کے اس کو بتاتے رہتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بچپن ہی سے بچے کو ایک ٹریننگ دے دیں کہ یہ ناکامی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ناکام ہوئے. اب آپ یقیناً تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے کہ مجھ سے کہاں کوتاہی ہو گئی تھی, نیکسٹ ٹائم وہ کوتاہی آپ سے نہیں ہوگی, تو یوں وہ کامیابی کی ضمانت بن جائے گی بات.
سر, ٹوٹا ہوا دل, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہے ٹوٹا ہوا انسان جس کا دل دکھا ہوا ہے. سب ایسا کیوں ہے سر؟ اس کے مقابلے میں تو بڑی دنیا ایسی ہے جو تسبیح پھیر رہی ہے, عبادت کر رہی ہے, لیکن ٹوٹے ہوئے دل کو بڑا, ایون اقبال جیسا ایک بڑا مفکر یہ کہتا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ شکستہ دل, ٹوٹا ہوا دل اللہ کی بارگاہ میں کیوں اتنا منظور نظر و قبول ہوتا ہے؟
ایک بڑی سمپل وجہ ہے, جب کوئی شکستہ دل, چوٹ کھایا ہوا انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اس پکار کے اندر اخلاص بے پناہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے دنیا میں کہیں بھی, چاہے وہ ایتھیسٹ کیوں نہ ہو, جب اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے تو پلٹتا رب کی طرف ہی ہے. تو جب ہم چوٹ کھائے ہوتے ہیں, دکھی بہت ہوتے ہیں, تو اللہ کے حضور جو ہم گڑ گڑاتے ہیں پھر اس کے اندر اخلاص بے پناہ ہے. اور رب تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی فیل کس نیت سے کیا گیا. جو کام ہم گڈ فیتھ میں کرتے ہیں, انفارچونیٹلی اس کا رزلٹ پازیٹیو نہیں آتا, تو اللہ اس پہ گرفت نہیں کرتا کبھی کہ ایک نیک نیتی سے کام کیا تھا, تو اس کا بوجھ ہم پر نہیں آتا. پھر یہ دنیاوی قانون میں بھی ہے کہ اگر آپ یہ پروو کر دیں ایون ان دی ہائیسٹ کورٹ کہ یہ کام میں نے گڈ فیتھ میں کیا تھا, تو آپ کو سزا نہیں ہوتی. تو اللہ تو بڑا مہربان ہے. تو وہ شکستہ دل, اس میں اخلاص بہت ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ رب کے بڑا قریب چلا جاتا ہے.
سر, یہ جو غیب کا علم ہے سر, ہاتھوں کی لکیروں سے, نمبریالوجی سے, اسٹرالوجی سے منع ہے سر, منع ہونے کی حکمت کیا ہے سر؟ اس کے پیچھے دین کیوں انکریج نہیں کرتا؟ کیونکہ باقی مذاہب میں تو ہم دیکھتے ہیں, بالخصوص ہندوازم میں تو بڑا کامن ہے, پیدائش پہ ہی جنم کنڈلی نکال لی جاتی ہے. بڑے بڑے ڈسیزنز, بڑے بڑے پاورفل لوگ ہم انڈیا کے دیکھتے ہیں, بھارت کے, وہ حساب کتاب لگوا کے پھر آگے چلتے ہیں. میں نے موسیٰ علیہ السلام پہ موویز دیکھیں, اس میں جو فرعون تھے انہوں نے اپنے ساتھ ایسے لوگ رکھے ہوئے تھے جو عامل تھے, جو حساب کتاب لگاتے تھے, رمل کا علم جانتے تھے, پھر اسٹریٹجی دیتے تھے کہ آپ یہ کریں. ہمارا دین کیوں انکریج نہیں کرتا؟
قاسم صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو میں علم غیب نہیں مانتا. یہ ہنڈریڈ آف سینچریز کے تجربات پر بیسڈ کیلکولیشنز ہیں جو انسان نے اپنے کئی سو صدیوں پر محیط تجربے کی بنیاد پر ورک آؤٹ کی, کہ جتنے انسان ملے ان کے اندر جو چیزیں کامن تھیں, ان کے جو حالات تھے, اس کو انہوں نے پرنسپل بنا لیا, اور پرنسپل بنا کے پھر وہ لکیروں کو پڑھنے لگے. تو جس کے ہاتھ میں فلاں لکیر فلاں جگہ پر ہے تو اس کے ساتھ یہ واقعات پیش آئیں گے. اسی طرح کئی سو صدیوں پر محیط स्टडी है उससे कैलकुलेट करके एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स वज़ा कर लिए इंसान ने, अब उन प्रिंसिपल्स को वो अप्लाई करता है और उससे जो नताइज अखज करता है उसको वो कहता है कि सर तुम्हारे साथ ये वाक़यात पेश आएंगे। तो मैं इस वजह से इसे गैब का इल्म नहीं मानता, ये कैलकुलेशंस हैं और उसको मैं अंडरमाइंड भी नहीं कर रहा। बहुत मेहनत हुई है, कई सौ सदियों पर मुहित तजर्बात हैं उससे ये इल्म बनाया गया। उनकी मेहनत को अप्रिशिएट मैं बतौर इल्म के तो मैं कर दूंगा कि उन्होंने मेहनत की है उसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इल्म गैब नहीं है ये। वो जो आपने हिंदुइज्म की बात की कि हिंदू कि यहाँ बच्चे की पैदाइश पे ही एक उसकी वो उसको क्या कहते हैं
जन्म कुंड
नहीं जायचा बनाया जायचा। उसका उससे कैलकुलेट करके किया, जो काम शुरू करना है उन्होंने वो एक जायचा बनवाना है और उस पर साध जो वक्त है वो निकालना है कि मुबारक घड़ी कौन सी होगी जिसमें काम शुरू किया जाए, शादी कभी यही है। लेकिन ज़रा ये तो मुझे बताइए कि क्या इंडिया में तलाकें नहीं होती, शादियां नाकाम नहीं होती, क्या वहाँ बिजनेसेस नाकाम नहीं होते, क्या वहाँ बच्चे राह रास्त से भटक नहीं जाते? तो अगर ये गैब का इल्म हो तो वहाँ तो गलती का इम्कान ही कोई नहीं है, ये कैलकुलेशंस हैं। इंसानी जहन उसका इल्म नाकेसी रहेगा, नामुकम्मल रहेगा, उससे जन्म लेने वाली हर चीज़ उसमें कोई ना कोई फ्लॉ ज़रूर होता, फ्लॉलेस कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन रब की तरफ से अता की हुई चीज़ें जो हैं वो फ्लॉलेस होती हैं। लेकिन जहाँ ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसको हम इंजीनियरिंग में कहते हैं, जहाँ ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाए वहाँ गलती ज़रूर होगी। यहाँ तक तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि इंसान ने बहुत मेहनत करके ये असूल वज़ा किए, पामिस्ट्री के एस्ट्रोलॉजी के, वो कमेंडेबल है उनकी एफर्ट। लेकिन ये कहना कि वो इल्म गैब है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंसान वहम में बड़ी जल्दी मुब्तला हो जाता है। आज अगर कोई पामिस्ट मेरा हाथ देख ले और ये कह दे कि जनाब सरफराज साहब आप तो 2 साल के बाद बड़े सख्त बीमार होने वाले हैं, मैं 2 साल के बाद तो क्या बीमार होऊंगा, उसके अगले लम्हे से बीमार होना शुरू हो जाऊंगा और 2 महीने नहीं गुजरेंगे मैं शदीद बीमार नजर आऊंगा। तो इस्लाम इसलिए मना करता है कि ऐसी चीज़ों के करीब मत जाओ, रब बेहतर जानता है क्या होने वाला है।
जो सोसाइटी कल्चर नॉर्म्स उसमें सब कुछ आ जाता है सर। सोसाइटी का सर एक हुसन कल्चर की वो साइड है सर जिसमें फ़नून लतीफ़ा आ जाते हैं सर। ये दुनिया के हर जगह पर हैं सर, मतलब अफ्रीका के कबीलों में, जंगलों के अंदर भी जो छोटे छोटे कबीले हैं वहाँ पर भी हैं सर। इंडो पाक तो कल्चर से भरा पड़ा सर, यहाँ म्यूज़िक ट्रेडिशन, रंग, खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ के रस्म और रवाज हैं सर। कुछ लोग सर इनसे बिल्कुल ही बददिल नज़र आते हैं सर, वो इतने मुतनफ़र हो चुके होते हैं, यानी उनके मिजाज में फ़नून लतीफ़ा होता ही नहीं है, उसकी सेंस ही नहीं होती और वो कुफर के फतवे तक लगाते हैं। कौन सा मिजाज ठीक है इसमें, नॉर्मल अप्रोच क्या है सर?
देखिए फ़नून लतीफ़ा बड़ी ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर बहुत से फ़नून आ जाएंगे। इंसान को जो कुछ अल्लाह ताला ने सलाहियतें अता फरमाई हैं उनसे भरपूर काम लेना चाहिए, लेकिन कुछ एरियाज रब ने मना कर दिए, जैसे तस्वीर है कि इबादत की जगह पर तस्वीर न लगाओ, इसलिए कि वो बुतप्रस्ती की तरफ ले जाएगी ग्रेजुअली, तो इस्लाम ने उसे मना कर दिया। इस्लाम की ब्यूटी यही है कि इस्लाम छोटी छोटी चीज़ों जो कल को बढ़ के बड़ी हो जानी है उनसे मना करता है। जैसे गुनाह है, गुनाह करने से इंसान को मना किया गया, लेकिन मुसलमान को उस जगह जाने से भी मना कर दिया जहाँ गुनाह हो रहा हो, बेशक तुम गुनाह ना करो। इसलिए कि जब इंसान गुनाह की जगह पर जाएगा तो वहाँ फिर एट्रैक्शन पैदा होती है। आहिस्ता सब कहता है चलिए एक बार मैं ट्राई तो करूँ, क्या होता है वो एक बार ट्राई करने ही में फंस जाएगा, फिर गुनाह में मुलव्वस हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो तस्वीर बना के हम इबादत की जगह पे लगा देते हैं, उससे मना किया गया ताकि ये मामला आगे ना बढ़े। तो इस्लाम ने तो सिर्फ ऐसी ही कुछ चीज़ों से मना किया, बुत बनाने से मना किया कि ये बुत परस्ती की तरफ ले जाएगी ये चीज़। तो जहाँ इस्तेमाल ये है कि इंसान भटक जाएगा वहाँ मना कर दिया, बाकी खुली छुट्टी है, आपको कुछ भी करते रहिए आप।
सर ये मिजाज में इस इन चीज़ों के लिए नफ़रत का होना फ़नून लतीफ़ा के लिए, आर्ट के लिए, कल्चर के लिए, ये शख्सी को कमी है, खूबी है, इसकी बुनियाद
नहीं? खूबी तो शायद मैं ना कहूँ, ये हिस्से लतीफ़ की कमी है।
अच्छा सर,
तो मुझे अपना पता है कि मेरे अंदर हिस्से लतीफ़ बिल्कुल है ही नहीं। मैं नफ़रत तो नहीं करता, आप शेर पढ़िए मैं बड़े शौक से सुनूंगा और सर धुनूंगा जो वाकई अच्छा शेर है। लेकिन अगर आप अगले ही लम्हे मुझसे पूछें कि ये शेर मैंने कौन सा पढ़ा, मैं आपको नहीं बता सकता कुछ भी। आप मुझे कहिए कि एक जुमला अदबी जुमला लिख दें, मैं वो एक जुमला नहीं लिख पाऊँगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस ही कम वक्त ठीक नहीं होगी। हिस्से लतीफ़ का ना होना ज़रूरी नहीं कि उससे नफ़रत दिला दे आपको, उससे अपनी कमाईगी का तो एहसास होता है कि मेरे अंदर ये बड़ी कमी है, लेकिन नफ़रत नहीं हो सकती, क्योंकि किसी अच्छी चीज़ से इंसान नफ़रत नहीं करता है। वो शिद्दत पसंदी है, वहाँ अपने अकीदे में, अपने बिलीफ में, अपनी सोच में जो शिद्दत है वो उसको ज़ाहिर करती है, और वो तादाद ज़्यादा नहीं होती कभी भी,
बिल्कुल ठीक,
बहुत कम होती है,
बिल्कुल ठीक।
वरना खूबसूरत चीज़ को, अच्छी चीज़ को देख के, मैं इस कैमरे को बिल्कुल नहीं समझता कि ये कैमरा क्या चीज़ है, लेकिन इसकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है मैं उसको देख के बड़ा खुश हूँ। आपसे कह भी दूंगा कि शाह साहब बड़ा खूबसूरत कैमरा ख़रीदा आपने, इसके ज़रिए से खींची गई तस्वीर मेरे सामने आएगी तो मैं देख के ये ज़रूर अप्रिशिएट कर दूँगा कि साहब इसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे हैं, बड़ी डिटेल शो कर रहे हैं इसके रिज़ल्ट, वो मैं कर लूँगा। लेकिन मुझे पता नहीं है कैमरा है क्या, कैसे काम करता है। तो इंसान अच्छी चीज़ की तारीफ़ किए बगैर नहीं रहता, मासवाए चंद केसेस में जहाँ वो बड़े कम केसेस हैं, तो वहाँ पे उसे अच्छी चीज़ों से खाम खाम में चिढ़ हो जाएगी, नफरत तो मैं नहीं कहूँगा, चिढ़ जाएगा कि मैं इसकी तारीफ़ क्यों करूँ।
सर इस वक्त पाकिस्तानी सोसाइटी में, समाज में जो शिद्दत आ चुकी है, एक्सट्रीमिज़म आ चुका है सर लोगों के रवैयों में, इसका सर कोई सोल्यूशन है सर? यानी हुकूमत, स्टेट ऐसे कुछ इकदाम उठाए जिससे ये शिद्दत कम हो सके सर? ऐसी पोजीशनिंग, ऐसी पोलराइजेशन पहले कभी नहीं देखी गई सर।
शाह साहब आपने खाना यकीनन ख़ुद कभी नहीं पकाया होगा, लेकिन खाना पकते देखा है। किचन में जो प्रेशर कुकर है उसके स्टीम रिलीज़ होने की आवाज़ अक्सर बेशतर आपने घर में सुनी होगी। प्रेशर कुकर में हम खाना डाल देते हैं और उसे आग पर रख देते हैं, अगर उसका प्रेशर आपने सेट नहीं किया और उसके ऊपर सेफ्टी वेल्व नहीं रख ऑन किया हुआ आपने, तो प्रेशर कुकर फटेगा और इर्द गिर्द की चीज़ों को भी तबाह करेगा। इंसान की ज़िंदगी में तफरी को बहुत अमल दखल है, ये तफरी एक ऐसा सेफ्टी वेल्व है जो इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन को, जज्बात की शिद्दत को एक ख़ास सतह से ऊपर आने नहीं देता। हमने जो ज़्यादती की है अपनी सोसाइटी के साथ, हमने सोसाइटी से तफरी के मौके ख़त्म कर दिए। एक ज़माना था, आपकी पैदाइश से पहले ही की बात होगी, मैंने बचपन में अपने देखा कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाके थे, जिसको अगर मैं पंजाबी में बात करूँ तो हर मोहल्ला उसका एक अपना लोकल पार्क ज़रूर होता था जहाँ जाके बच्चे शाम को खेल लेते थे। और वो पार्क इतने बड़े थे कि एक ही वक्त में आप वहाँ फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और इस तरह की गेम्स खेल सकते थे। रीडिंग रूम्स होते थे, छोटी छोटी लाइब्रेरियाँ हर मोहल्ले में थीं, फिर पूरे शहर की एक सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी। रीडिंग बाज़ार तो खुद बहुत बड़ा रिलीवर है, वो आपका प्रेशर वो रिलीज हो जाता है। स्कूल टाइम में, इवन इन प्राइमरी स्कूल, मैं तो खैर कॉरपोरेशन के टाटमार्का स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ जहाँ तालीम बिल्कुल मुफ्त थी, उस लेवल पर भी हमें वो मुख्तलिफ टूर्स पे ले जाते थे, कभी अजायब घर में, कभी चिड़ियाघर में, और तो और पिकनिक पर ले जाते थे। साल में एक दो तीन बार मौके ऐसे आते थे कि पिकनिक पर चले गए। हाई स्कूल में चले गए तो ये फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, फिर वहाँ स्कूल के अंदर फंक्शन होते थे। ये सब वो चीज़ें थीं जो हमारे अंदर से प्रेशर निकाल देती थी। हर स्कूल की प्लेग्राउंड थी जहाँ शाम को सुपरवाइज्ड खेलें होती थी। हमने वो तमाम पार्क्स ख़त्म कर दिए आबादियों से, हमने स्कूल के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा। स्कूल जो है 10-10 मरले के मकान में कायम है, बच्चे के लिए तफरी का कोई मौका नहीं है। जब हम किसी सोसाइटी से तफरी को निकाल लेंगे तो वहाँ फ्रस्ट्रेशंस पैदा होंगी, और वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते फिर ऐसे रवैयों की तरफ चल जाती हैं जो बड़े तल्ख रवैये होते हैं ज़िंदगी के बारे में। हम एक बार फिर कोशिश कर लें कि और कुछ नहीं तो जो नई सोसाइटीज़ बेशुमार बन रही हैं वहाँ अंडर लॉ एक एक ब्लॉक का इंडिपेंडेंट पार्क बनवा दें और तफरी की चीज़ें बनवा दें, तो आप देखिए कि यही रवैये बैलेंस रवैये होने शुरू हो जाएंगे।